मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। एक बात आपने महसूस की होगी कि अखबारों में अभी खासकर ट्विटर को लेकर के खबरें आ रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब तो खैर आर्टिकल्स के दौर में हम प्रवेश कर गए हैं। दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्विटर है, अब एलन मस्क उसके मालिक होने जा रहे हैं, उनके हाथ में आने वाला है। तो खासकर ऐसी स्थिति को देखते हुए अब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि ये जो ट्विटर है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसकी कितनी रक्षा कर सकेगा। और इसको लेकर के लोग आशंकित भी हैं, क्योंकि एलन मस्क का इससे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई इस मायने में बेहतर नहीं रहा है कि वे खासकर लोगों की अभिव्यक्ति जो होती है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा करें, या लोगों के हितों को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित रहे हों। और अब जबकि इस मीडिया पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा, तो इस प्लेटफार्म का उपयोग वे किस तरीके से करेंगे, इसको लेकर के यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं विचार विमर्श में लगी हुई है। इस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और मेरी गुजारिश है कि आपको यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलते हो तो आप प्लीज़ उन्हें नोट करते जाएं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से खासकर इस घटना को लेकर के जो पॉइंट्स बन सकते हैं, या कह लीजिए जो प्रश्न बन सकते हैं, पहला तो यही है कि ट्विटर जैसे जो प्लेटफॉर्म है, जिसे आप सोशल मीडिया कह लीजिए, वो खासकर जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनके कितने बड़े संरक्षक हैं, ये प्रश्न बन सकता है। दूसरी बात कि जब किसी मीडिया पर इस तरीके से किसी बहुत धनी व्यक्ति का अधिकार हो जाता है, एलन मस्क छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तब वो जो मीडिया का चरित्र होना चाहिए, उसका जो एक सामाजिक स्वरूप होना चाहिए, वह कितना बचा रह सकता है। और मुझे लगता है कि यह दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दैनिक भास्कर में इसी को लेकर के एक बहुत विस्तृत लेख छपा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें आप पाएंगे कि एक शब्द का प्रयोग किया गया है, प्लूटोक्रेसी। ये एक शब्द है, बल्कि इसे भी आपको नोट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि आपको इसका अर्थ मालूम है या नहीं है। उस आर्टिकल में बकायदे इसे बताया भी गया है कि प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब है। प्लूटोक्रेसी का मतलब है कि जब तंत्र पर, क्रेसी का मतलब तंत्र, डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का तंत्र, ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरों का तंत्र, जिसे हम अफसरशाही कह देते हैं, और प्लूटोक्रेसी का मतलब है कि जब तंत्र पर यानी कि सिस्टम पर, या यूं कह लीजिए कि सरकार पर, राज्य व्यवस्था पर, जो धनी वर्ग है उनका अधिकार हो जाए। तो ये जो हमारे सोशल मीडिया हैं, और सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन पर भी हम देख रहे हैं कि कैसे धीरे 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 जो धनी वर्ग है, जो उद्योगपति है, उनका अधिकार होता चला जा रहा है, वे उसे खरीदते चले जा रहे हैं। और सच में जब यह स्थिति बिल्कुल पूरी हो जाएगी कि सारे मीडिया, सारे सोशल मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे प्रिंट मीडिया अगर इस तरीके से प्लूटोक्रेसी के हाथ में आ गए, तो फिर डेमोक्रेसी की स्थिति क्या होगी, इस पर विचार किया जाने लगा है, और सच पूछे तो विचार किया भी जाना चाहिए। इसी के साथ ही मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमारे गृह मंत्री जी ने राजभाषा सम्मेलन में एक बात कही थी, बैठक में एक बात कही थी कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा होनी चाहिए। इसको लेकर के भी आप देख रहे हैं कि एक विवाद की स्थिति बनी हुई है, और लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, बकायदे एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इसे भी आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में शामिल कर लें, यदि संभव हुआ तो मैं इस पर विस्तार से बातें करूँगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊँ, आज मैं एक टेस्ट आप सबका लेना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ। कल आपको ध्यान होगा कि मुख्य विषय के तहत मैंने न्यायालयों के भारतीयकरण के बारे में कुछ बातें की थी, और उसी दौरान मैंने आप सब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो प्लीज़ आगे चल करके इस पर जो भी आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलें, तो उसमें से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाएं। कल के ही प्रेस क्लिपिंग्स में मैंने जो हिंदुस्तान है उसका एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, अदालतों के भारतीकरण की जरूरत और फायदे। जानबूझ करके मैंने इस बात की चर्चा अपने डेली ऑडियो लेक्चर में नहीं की थी, ऐसा मैंने जानबूझ कर किया था, इसलिए कि मैं देखता हूं कि मेरे निर्देशों का आप कितनी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, आप खुद उस प्रेस क्लिपिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और यदि आप पढ़ते हैं तो फिर उससे नोट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। आपने क्या किया आप जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आधार पर आप इस बात का थोड़ा सा परीक्षण कर सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो आप तैयारी कर रहे हैं कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और यदि आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं और मुझ पर थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं तो उसे कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बात केवल विश्वास करने से नहीं बनेगी, बात केवल सुनने से भी नहीं बनेगी, बात तो फॉलो करने से बनेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आप अपने आप की थोड़ी सी जांच परख कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने पॉइंट्स नोट किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आर्टिकल है अपने आप में कंप्लीट आर्टिकल है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसमें बकायदे बताए गए हैं कि जब हम न्याय के भारतीकरण की बात करते हैं तो वे कौन कौन से बिंदु हैं जो आज के न्याय की व्यवस्था में होने चाहिए लेकिन नहीं है। इसके बाद 2-3 उसमें बहुत ही अच्छे संदर्भ भी दिए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपने उन संदर्भों को नोट किया है या नहीं किया है। एक मालीमथ समिति की रिपोर्ट का संदर्भ है और दूसरा 2009 में ग्राम न्यायालय कानून का संदर्भ है। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत आर्टिकल्स खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए कोई दूसरा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उस प्रेस क्लिपिंग्स को देखें और इस पर एक नोट तैयार कर लें। अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर और वह है आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि जो भामर भारतीय जीवन बीमा निगम है उसका IPO आने वाला है। आई इनिशियल यानी कि आरंभिक, पी यानी कि पब्लिक सार्वजनिक, ओ यानी कि ऑफर निर्गम, ये शेयर मार्केट का एक शब्द है और बहुत ही इनिशियल शब्द है, बहुत ही बेसिक वर्ड है, और खासकर आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसकी जो शब्दावली है और खासकर इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। इतनी जानकारी नहीं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के वाले परीक्षार्थी होने के नाते थोड़ी अपेक्षा तो आपसे की ही जाती है। देखिए, अगर हम कहते हैं आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, इसका मतलब है कि कुछ और तरह के भी निर्गम होते होंगे तभी इसका नाम है आरंभिक, नहीं तो सार्वजनिक निर्गम सीधे सीधे कहा जा सकता था। दरअसल होता क्या है, देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक पब्लिक सेक्टर है, जानते हैं आप, बीमा की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, तो जो भी कंपनियां होती हैं इनको बीच बीच में धन की जरूरत पड़ती है अपने विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए, या उनको लगता है कि हमें और धन किसी और दूसरे काम के लिए चाहिए। तो जब वो धन के बारे में सोचते हैं तो उनके कई तरीके हो सकते हैं, वो बैंक से ऋण ले सकते हैं और दूसरे तरीके से धन जुटा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका शेयर मार्केट में जाना है, और ये जो सार्वजनिक निर्गम है ये शेयर मार्केट में ही जाने का एक रूप है। उन्हें लगता है कि यार पब्लिक से पैसा लिया जाए, क्योंकि जब ये पब्लिक से पैसा लेते हैं तो जब पब्लिक पैसा लगाती है, जैसे अभी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आया है, तो आप बकायदे फार्म भर सकते हैं जो भी इसका सिस्टम है, और हो सकता है कि फार्म भरने के बाद आपको भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ शेयर मिल जाएं, जो आप अप्लाई करेंगे उस हिसाब से शेयर आपको मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 100 शेयर मिल गए तो इसका मतलब है कि आप सार्वजनिक बीमा निगम के अब पार्टनर बन गए हैं, पार्टनर बने, शेयर होल्डर बन गए ना आप, तो आप बकायदे पार्टनर बन गए हैं। पार्टनर बन गए हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस कंपनी को फायदा होगा तो उस फायदे का उतना हिस्सा आपको भी मिल जाएगा जितने के आप पार्टनर हैं, लेकिन यदि नुकसान हुआ तो स्वाभाविक है कि आपको भी उतना ही नुकसान होगा जितने के आप पार्टनर हैं, यानी कि आप लाभ और हानि के भी भागीदार हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो उसे उस लिए गए पैसे पर ब्याज नहीं देना पड़ता, इसके अतिरिक्त यदि वो कहीं दूसरी जगह से पैसा लेती है, बैंक से ले और कहीं इंस्टीट्यूशन से ले, तो डेफिनेटली उसे ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज देने का मतलब है कि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, वो जो काम कर रही है उसकी कॉस्ट, उसके कीमत में इजाफा हो रहा है, उत्पादन लागत में इजाफा हो रहा है। तो इसीलिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यह होती है कि हम पब्लिक के पास जाएं, लेकिन सीधे आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते। एक संस्थान है, नाम आपने सुना होगा, सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह संस्था है जो इस पूरे के पूरे मामले को देखती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में काम करती है और इसका संचालन करती है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी कंपनी शेयर मार्केट से पैसा जुटा नहीं सकती। अभी वो पब्लिक ऑफर आएगा, पब्लिक अप्लाई करेगी, इसके बाद उनको शेयर दे दिए जाएंगे। इसके बाद पर्टिकुलर एक दिन पर, जो पहले से फिक्स होता है, शेयर मार्केट में भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर सूचीबद्ध हो जाएंगे। जितने में भी आपको ऑफर दिया गया है कि एक शेयर की कीमत इतनी है, इसके बाद शेयर मार्केट में देखेंगे कि उसकी कीमत निर्धारित हो जाएगी कि इसकी इतनी कीमत है, और इसके बाद फिर शेयर मार्केट में इस शेयर की भी खरीदी और बिक्री शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी समय मेरे पास है उसके तहत मैं थोड़ी सी जो बातें आप सबको बता सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस इनिशियल जानकारी के बाद यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको इसको समझने में मदद मिल सकती है, और मैं चाहूँगा कि आपको ऐसा करना भी चाहिए। इस टॉपिक की एक हल्की फुल्की जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, संतोष साहू चतरा झारखंड से, उत्कर्ष श्रीवास्तव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और राम काले औरंगाबाद से। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।